ये आकाशवाणी है। अब आप आकर्षिता सिंह से समाचार सुनिए। अठारवां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन आज भुवनेश्वर में शुरू होगा। उड़ीसा सरकार इसमें 50 देशों से भारत आने वाले आदिवासी भारतीयों के समक्ष की समृद्ध संस्कृति और विरासत का प्रदर्शन करेगी। सम्मेलन की शुरुआत युवा प्रवासी भारतीय दिवस कार्यक्रम से होगी। इसका आयोजन उड़ीसा सरकार, युवा मामले और खेल मंत्रालय मिलकर कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उद्घाटन सत्र में हिस्सा लेंगे। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी शुक्रवार को समापन सत्र की अध्यक्षता करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू विभिन्न क्षेत्रों में अपनी उपलब्धियों को मान्यता देने के लिए प्रवासी भारतीयों को प्रवासी भारतीय सम्मान भी प्रदान करेंगी। त्रिनिदाद और टोबैगो की राष्ट्रपति क्रिस्टीन कार्ला कंगालू प्रवासी दिवस की मुख्य अतिथि हैं। प्रवासी दिवस का विषय है विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। राष्ट्रपति कंगालू सम्मेलन को वर्चुअल रूप से संबोधित करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रवासी समुदाय के लिए विशेष पर्यटक रेलगाड़ी प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। ये गाड़ी दिल्ली के निजामुद्दीन स्टेशन से रवाना होगी और 3 सप्ताह तक देश भर में विभिन्न स्थानों का दौरा करेगी। श्री मोदी सम्मेलन में 4 प्रदर्शनियों का भी उद्घाटन करेंगे। इनमें रामायण की विरासत, प्रौद्योगिकी और विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान, मांडव से मस्कट पर जोर देते हुए भारतीय प्रवासियों का विकास तथा उड़ीसा की विरासत और संस्कृति शामिल है। इससे पहले प्रवासी भारतीय दिवस वार्षिक सम्मेलन मध्य प्रदेश के इंदौर में जनवरी 2023 में आयोजित किया गया था। 18वीं प्रवासी भारतीय दिवस में भाग लेने उड़ीसा पहुंचे केंद्रीय विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल पुरी और भुवनेश्वर के विभिन्न पर्यटन स्थलों का दौरा किया। उड़ीसा के 5 दिवसीय दौरे पर आए विदेश मंत्री आज से भुवनेश्वर के जनता मैदान में शुरू होने वाले प्रवासी भारतीय दिवस में भाग लेंगे। इस 3 दिवसीय विशाल कार्यक्रम में विश्व भर से लगभग 4,000 प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के दौरे पर आज आंध्र प्रदेश और उड़ीसा जा रहे हैं। इस दौरान वे 2,00,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण, उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज आंध्र प्रदेश के पुदीन डाका में एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की ग्रीन हाइड्रोजन हब परियोजना की आधारशिला भी रखेंगे। इस पर करीब 1.85 लाख करोड़ रुपए की लागत आएगी। इस परियोजना से 20 गीगावाट अक्षय ऊर्जा का उत्पादन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि डिजिटल व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा नियमावली 2025 का मसौदा नागरिक केंद्रित शासन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव की पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए श्री मोदी ने कहा कि नियमावली का उद्देश्य विकास और समावेशिता को बढ़ावा देते हुए व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा करना है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा डिजिटल व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा नियमों का मसौदा जारी किया गया है। मंत्रालय ने माईगोव प्लेटफॉर्म के माध्यम से 18 जनवरी तक जनता और हितधारकों से मसौदा नियमों पर टिप्पणियां आमंत्रित की हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान का सभी राजनीतिक दलों ने स्वागत किया है। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि चुनाव लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव है। उन्होंने दावा किया कि 5 फरवरी को मतदान के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दिल्ली में डबल इंजन की सरकार बनेगी। इस बीच दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा कि 5 फरवरी को दिल्ली के लोग बदलाव के लिए वोट करेंगे, क्योंकि आप सरकार अपने वादों को पूरा करने में विफल रही है। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया ने उम्मीद जताई है कि मतदाता आम आदमी पार्टी को सरकार बनाने के लिए फिर से चुनेंगे। एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित 2 विधेयकों पर संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी की पहली बैठक आज होगी। इन विधेयकों को आधिकारिक तौर पर संविधान का 129वां संशोधन विधेयक 2024 और केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2024 नाम दिया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि तिब्बत में भारत की सीमा के करीब ब्रह्मपुत्र नदी पर एक मेगा बांध बनाने की चीन की योजना के बारे में सरकार सतर्क है। भारत ने कहा है कि वो अपने हितों की रक्षा के लिए निगरानी जारी रहेगा और आवश्यक कदम उठाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।